ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नश्चपायेषु वदेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयस्य। जय हरे कृष्णा। आज का भरत महाराज के चरित का वर्णन अध्याय स्कंद 5 है, अध्याय 8 है, श्लोक 18 और 19। पहले 18 का हम प्रयोग करेंगे। अपिचा हम बोलेंगे पहले। अपिच न कृतम शालकुत्तनजम वा नेकचरम एकचरो वा भक्षयति। अपिच न कृत अतिच न वृका शालवृको न तम वा नेकचरम एकचरो वा भक्षयन्ति। अपिच अथवा न नहीं वृका भेड़िया साल वृक कुत्ता अन्यतम अनेक में से कोई एक वा अथवा न एक चर झुंड के झुंड विसरने वाले सुकर एक चर अकेला धूमने वाला व्याघ्र वा अथवा पक्षति बेचारे पशुओं को खाता रहता है। मुझे पता नहीं किंतु जो हो सकता है कि भेड़िया या कुत्ते अथवा झुंडों के में रहने वाले सुअर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। तात्पर्य बाघ कभी भी जंगल में झुंड में नहीं घूमते। प्रत्येक बाघ अकेला घूमता है किंतु जंगली असुर एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार भेड़िए कुत्ते आदि भी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि न हो बेचारा हिरण इनमें से किसी भी हिंस पशु द्वारा मार डाला गया हो। श्लोक 19। निम्नलोस्ति भगवान अंश कला जगत यत्रम तदापि मम मन मुगवदवाचम गच्छति। निम्नलोचित शब्दार्थ करिए निम्नलोचित है डूब रहा है। हा मो भगवान सूर्य के रूप में भगवान सकल जगत समस्त ब्रह्मांड का क्षेम उदय कल्याण करने वाला त्रयी आत्मा तीन वेदों से युक्त अदापि अब भी मम मेरा न नहीं मृग वधु न्यास मृग की धरोहर आगच्छति वापस आया है। Uh, अनुवाद। ओहो, सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं, दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है। सूर्यदेव साक्षात वेद है, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहे हैं, तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 552 में सूर्य को भगवान के नेत्र कहा गया है। असूर्य सविता सकल गहाणाम राजा समी मूर्ति से सतेजा अग्ना सभवती समुद्र काल चक्र गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामी। सूर्योदय होते ही मनुष्य को गायत्री मंत्र में आरंभ करने करके वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य परमेश्वर के नेत्रों का प्रतीक है। महाराज भरत को पश्चाताप हो रहा था कि यद्यपि सूर्य अस्त होने को है, किंतु बेचारे मृग की अनुपस्थिति कारण उन्हें कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। इसलिए भरत महाराज ने अपने को सर्वाधिक अभागा माना, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। जय शिल्पवाद की। यहाँ भरत महाराज का चरित्र का वर्णन है। भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है। ऋषभ देव ने उनके पुत्र, 100 पुत्र थे, उसमें सबसे पुत्र बड़े थे महाराज भरत। भरत महाराज उसके पिता का आज्ञा का पालन करके, पूरा पालन करके पूरा पृथ्वी का राज्य उसने स्वीकार किया और प्रजा को पुत्र रूप में पालन करते हुए उसने राज्य बहुत अच्छी तरह से संभाला। भरत महाराज महान भक्त थे। भरत महाराज के नाम से ये पूरा भारतवर्ष पड़ा हुआ है। पहले अजनाब था, उसके बाद भारतवर्ष पड़ा। वो भरत महाराज पूरे साम्राज्य के, मतलब पूरा पृथ्वी के साम्राज्य करते थे। भरत महाराज साम्राज्य राज्य करते करते भक्ति में लगे हुए थे, पिता का उपदेश का पालन कर रहे थे। हरिद्वार में जाके बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ विधि और भगवान को तुष्ट किया, खुद भी संतुष्ट हो गए। ऐसे भरत महाराज ने बहुत सालों तक, बोलते भागवत में बताया 1 करोड़ साल तक राज्य किया। भरत महाराज के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को राज सौंप के भरत महाराज निवृत्ति लेके पुलाश्रम, जहाँ गंडकी नदी बह रही है, वहाँ चले गए। भरत महाराज वहाँ आश्रम में कुटिया बना के गंडकी नदी के किनारे पे वहाँ रहते थे और अपना भजन करते थे। भजन करते करते भरत महाराज इतना भाव विभोर हो जाते थे, उसको अष्ट विकार सब होते थे। भजन करते करते भगवान का नाम लेते रहते, भक्ति करते करते आंखों से अश्रु बहते थे और कई प्रकार के, मतलब अष्ट विकार जो है वो उसको उदित होते थे। इतना भक्ति में लगे हुए भरत महाराज वहाँ भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भरत महाराज गंडकी नदी किनारे बैठे हुए थे तो एक हिरणी वहाँ पानी पीने आई। बाघ की त्राट सुन के हिरणी एकदम बेबल हो गई और नदी को पार करने के लिए उसने छलांग मारी। मगर हिरणी गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया और हिरणी सामने किनारे जाके उसकी मृत्यु हो गई। अभी भरत महाराज प्रजा का पालन करते करते यहाँ भजन करने के लिए आए थे, तो भरत महाराज को थोड़ा पालन की इच्छा से बोला, मैं इसकी रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरे चरण में है। तो भरत महाराज ने बच्चे को उठा लिया और अपने पास आश्रम में ले गए। आश्रम में बच्चे को पालन कर रहे हैं, अपना भक्ति भी कर रहे हैं। धीरे 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 भक्ति करते 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 तो भरत महाराज कुछ वस्तु लाते थे, ध्रुव वगैरह, फूल हार वगैरह, फूल वगैरह छूट के लाते थे जंगल में, वो वहाँ रखते थे। तो बच्चा है उसको सूंघते थे, खाते पीते थे, मतलब ऐसे ही, मतलब अभी भक्ति में बाधा होने लगी। ये बाधा उपस्थित होते होते भरत महाराज भी धीरे धीरे ये मुख में आसक्त होते रहे। मुख में इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई, धीरे धीरे उसका जो भजन क्रिया वगैरह थी वो छूट गई। भजन क्रिया छूटने से मुख के साथ ही अपना पूरा आचार विचार, उसके साथ रहन सहन। अभी भरत महाराज जी जब सोते थे तो उसको साथ में लेके सोते थे, कभी उसे कंधे बिठाते थे, साथी पे रखते थे। ऐसा लालन पालन उसकी आध्यात्मिक जो स्थिति भक्ति थी एकदम धीरे 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 क्षीण हो गई। अभी भरत महाराज और उसका बच्चा, मृग का बच्चा, वो पालन करते। हम लोग सोचते हमारे संसार में भी ऐसे बहुत सी सारी उपाधियां है, हमारे वहाँ बच्चे भी होते हैं और घर में सब है, तो क्या करते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए कुत्ता भी पाल लेते हैं। अभी कुत्ता पालना और बच्चों का मनोरंजन, अभी घर में उठते ही क्या होता है, सूर्योदय होते ही ये होता है कि भाई ये बच्चे को, ये कुत्ते को जाके थोड़ा, घर में से आदेश आता है भाई एक कुत्ते को जाके थोड़ा टट्टी करा के ले आओ। अभी ये सूर्योदय के टाइम में यही कायम हमारा रह जाता है, जो ये संसारी में फंसे हुए भक्ति नहीं करते हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं, बार बार बोलते हैं, ये जो है कुत्ता पालन, वो अगले जन्म में फिर वही कुत्ता बनेगा जो पालन करने वाला, निश्चित कुत्ता बनेगा। यहाँ प्रभुपाद जी कोट करते हैं, यम आप कलयुग में, मतलब जैसे जैसे देह छूटते समय जो जो वस्तु का ध्यान करते हैं वही दूसरा जन्म हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ भरत महाराज का है, भरत महाराज गायत्री मंत्र करते थे पहले, तीन संध्या करते थे। यहाँ भरत महाराज को मुख के साथ जो आसक्ति हो गई है, मुख के हिसाब से उसको भी सूर्य उदय हुआ, सूर्य मतलब सूर्य उदय होते हमें रुषा से जो गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र करते हैं, तो यहाँ गायत्री मंत्र का नहीं है। यहाँ भरत महाराज को यही चिंता चल रही है कि मेरा बच्चा हमारे से चला गया है, वो कहीं कहाँ होगा, उसको कोई खा गया होगा, वो मिला नहीं, वापस नहीं आया, ये चिंतन चलता रहता है। तो उनकी आसक्ति भक्ति से छूट के मुख के बच्चे में हो गई। अभी भरत महाराज ये कहते हैं कि ये सूर्य का उदय हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा मूर्ख बच्चा भी वापस नहीं आया, खो गया है, सूर्य अस्त होने आया है। पर वो ये जानते हैं कि मेरा ये सब कार्य होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। भरत महाराज को इतना समझ है कि वहाँ ये कार्य मेरा हो रहा है, करना हो चाहिए, उदय होते हैं, पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि मुख में आसक्ति है। तो यहाँ हमारा अभी हमने जो भजन क्रिया किया, अभी भजन गाया जो अरुणोदय का, वो अरुणोदय का भजन चैतन्य महाप्रभु अरुणोदय होते ही अपना भक्त को लेके और सूर्य, जैसे सूर्योदय होता है भक्तों को लेके समूह को साथ लेके जैसे बाहर निकलते, जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण दिजमणि गोरा चांद जाग गए तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। नगर भ्रमण में कीर्तन करते करते नगर भ्रमण कर रहे हैं। ताताई ताताई मधुध्वनि के मुदंग से उसी के ताल से ताल मिलाकर झांझर नित्याद वाद बजाने लगे, जिसे प्रेम में अविष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पक्के हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग डल डल करके तथा अर्थात वे नृत्य करने लगे, तथा नृत्य करते करते हुए अनेक श्री चरणों के नूपुर बजने लगे। चैतन्य प्रभु जब नृत्य करते थे जाते तो अपने नूपुर पहने हुए थे तो नूपुर भी बज रहे वहां। अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात तो सोते सोते एक दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवानों का उच्चारण में कीर्तन करो। यहाँ भगवान आदेश दे रहे, भाई तुम्हें रात भर तो सोते रहे उसमें नहीं, अभी उठे जब सूर्य की उपस्थिति में कीर्तन करने जा रहे। बोले भगवान हरि का नाम लो, मुकुंद का नाम लो और कीर्तन करो। अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात तो सोते सोते ही दिन को शरीर में श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान को उस शोर से कीर्तन करो। तुम समय विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अब भी यदि तुमने अशोकनंदन कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है। बोले मानव देह में भजन कर लो, मानव देह खाली भजन के लिए है। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ ही व्यस्तता में बीत जा रहा है, तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं जगा बजते? अपने हृदय के राजा है भगवान। बोले ये भगवान को आप क्यों नहीं बजते हो? इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं है, अतः तुम यत्नपूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के लिए सांसारिक व्यवहार करो। सांसारिक व्यवहार करो, जीवों का कल्याण करने के लिए यह मधुर सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित कर देते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते, आप लोग कृष्ण भावना रूपी अमृत का पान करें जिससे मुझे शांतता प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कोई भी और कुछ भी नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु सूर्य उदय होते ही ये अपना समूह लेकर ऐसे कीर्तन करने के लिए निकले। ये सूर्य उदय होते हमारा जो विधि है शौच क्रिया वगैरह करके और भगवान का कीर्तन में, जैसे हमारे यहाँ होता है मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती भोर से लेकर 8 बजे तक हमारा सब कीर्तन वगैरह चलता रहता है। तो सूर्य उदय से ये सब कार्य होना चाहिए, नहीं कि संसार के जीव अपने आज मतलब भौतिक जगत में अपना अपना मतलब क्या क्या नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। अभी यहाँ हमारे पास आता है कि जीवे दया नामे ऋषि और साधु सेवा। तो जीवे दया ये के चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए यात्रा कर रहे थे, झारखंड से गुजर रहे थे, महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब झारखंड के जंगल में से गुजरे तो सारे जीव महामंत्र सुन के भगवान के मुंह से, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो भगवान के मुंह से महामंत्र सुन के सारे पशु मंत्र बोलते बोलते अपनी भाषा में मंत्र बोल रहे हैं और नाच रहे हैं। उसमें बाघ है, बरु है, हाथी है, बीरन है, सब मतलब जो एक दूसरे का भक्षण करने वाले है सब पशु है, वो भी एक साथ मिल के हाथ उठा के भगवान के साथ नाच रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हमारा यह है कि सब तरह से भौतिक संसार से आसक्ति छोड़ के हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में सबसे पहला भक्ति है सुनना, भगवान के कीर्तन नाम गुण को सुनना। तो उसमें सुनने में आपने सुना होगा विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उसकी नंद पुत्री थी रुक्ष्मणी। रुक्ष्मणी देवी ने भगवान को कभी नहीं देखे थे, भगवान का खाली गुणगान सुना था। गुणगान उसके रूप, उसका मतलब उसका बखान, उसके वहाँ कई संतो आते रहते थे, नारद जी भी जाते थे। तो वो उनके मुख से सुनते 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 उसको इतना भगवान पति गाढ़ प्रेम हो गया कि उसने यही निर्णय कर लिया कि मैं पति रूप में अगर स्वीकार करूँ तो सिर्फ कृष्ण को ही, और मेरे लिए कोई नहीं है। अभी उसके भाई बंधु वगैरह तो चाहते थे, मगर उसका बड़ा भाई था रुक्ष्मी, उसका दोस्त था अपना शिशुपाल। शिशुपाल चाहता था कि उसका दोस्त, मतलब रुक्ष्मी चाहता था कि शिशुपाल उसका दोस्त था उसके साथ रुक्ष्मी का विवाह किया जाए। माता पिता भीष्मक देव तो वगैरह चाहते थे कृष्ण के साथ हो, मगर बड़े भाई की बात उन लोगों ने स्वीकार करनी पड़ी। तो रुक्ष्मणी ने ये सब गुणगान सुन के भगवान को पति रूप में स्वीकार करके उसने एक प्रेम पत्र लिखा, बोले प्रभु आप आइएगा, मैं आपको वरण कर चुकी हूँ मन से, और आप नहीं आएंगे तो मैं, मतलब ये शिशुपाल मतलब इन लोगों से मेरा कोई वो नहीं है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी। भगवान आए और बड़ी सभा में उसको मतलब बताई थी विधि विधि कैसे कैसे उठाना है, हरण करके भगवान ले गए। तो ये है भगवान के प्रति, देखो गुणगान सुन के और ये हिसाब से रुक्ष्मणी जी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हमें भी भगवान के साथ ऐसे ही भगवान के साथ खोजने को संबंध जोड़ के, संबंध क्या है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, या प्रेम भक्ति भाव से भगवान को हमको संबंध जोड़ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे अभी भगवान के प्रति कितना गाढ़ प्रेम, चैतन्य महाप्रभु शिवास के आंगन में नृत्य कर रहे हैं, हमेशा नृत्य होता रात को, रात भर नृत्य करते थे, नाचते थे और इतना आनंद विभोर हो जाते थे भगवान के नाम में कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना शिवास पंडित ख्याल रखते थे। इसमें एक दिन क्या हुआ, शिवास पंडित का पुत्र मृत्यु हो गई, अंदर से आवाज आई, श्रिया सब रो रही थी पुत्रों की मृत्यु के हिसाब से। तो शिवास पंडित समझ गए कुछ गड़बड़ है, गए अंदर देखा उसका लड़का मृत्यु हो गई है। तो उसने श्रियों को आदेश दिया, आप बिल्कुल रोएंगे नहीं, उसका लड़का मृत्यु हो गई है, बोले आप कोई रोएंगे नहीं, अगर ये रोने की आवाज महाप्रभु के पास पहुंचेगी तो उसके कीर्तन में उसको डिस्टर्ब होगा, विघ्न पहुंचेगा, मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन ऐसे भाव में चल रहा था उसमें कोई थोड़ी भी डिस्टर्ब होती थी तो बहुत परेशानी होती, मतलब परेशानी यह है कि उसके कीर्तन में भाव नहीं आता था। तो बोले आप अगर रोएंगे तो मैं गंगा जी में कूद के मेरी जान दे दूंगा। शिवास पंडित आए अंदर, नृत्य चल रहा, तभी जाके महाप्रभु बोले कि आज हमारा नृत्य में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है। बोले शिवास तुम्हारा लड़का क्या है, कहाँ है। अब प्रभु जान गए, तो शिवाज पंडित तो कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर वो भक्त लोगों में थोड़ी कानापूसी हो गई, बोले लड़का उसका मृत्यु हो गया, ऐसे ऐसी बात है महाप्रभु, बाबू जी को पता, इसीलिए बोला भाई बुलाओ इसको, बुलाओ इधर, ले आओ इधर। अभी जाके मुकुंद को शिवाज के लड़के को वहां ले आए और बोले खड़े हो जा, क्या हुआ क्या बात है। तभी जाके वो खड़े हो गए, देखो महाप्रभु का ये है शिवास पंडित का कीर्तन में कितना रुचि, और ये है सेवा, ये साधु सेवा बोलते हैं इसको, कि कोई भी नाम शक्ति में मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके लिए पूरी पूरी रक्षा करें। तो ये हमारा अभी एक छोटा सा आसक्ति होती है हमारी, छोटी सी आसक्ति है मगर वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, आसक्ति भौतिक आसक्ति होती है, वैसे आसक्ति भगवान के प्रति होती है, तो दोनों आसक्ति की बात है। अभी हमारी भौतिक आसक्ति में उसमें क्या हुआ, एक बार निमी महाराज जो थे जनकपुर, वहाँ हमेशा भक्ति कीर्तन चलता रहता था, भक्ति कीर्तन ऐसा चलता था वहाँ साधु लोग पड़े ही रहते थे तंबू में डाल के, कहीं जाते नहीं थे, और कीर्तन मतलब 12 महीना कीर्तन कोई ना कोई साधु आ जाते थे, कीर्तन करते थे, चलता था अपने गुरु या कहीं ऐसे, तो सब साधु लोग आके कीर्तन में बैठ जाते थे आगे, ऐसे आगे बैठते हैं तो एकदम आगे जगह भी नहीं होती है, ऐसे नज़दीक में बैठ जाते हैं, सुनने में आनंद ले रहे हैं। अभी निमी महाराज तो भाई राजा है, अपने राजकारोबार में जैसे कथा शुरू होती थी ऐसे ही वो उसी टाइम आ जाते थे, कथा शुरू होती है तो वक्ता होते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी आगे आ जाइए। तो ऐसे चलते चलते महाराज जी को आगे बिठा रहे हैं, वो साधु लोग हैं मन बड़े संत हैं, तो उसको मन में थोड़ा वो हो गई, देखो हम आगे बैठे हैं उसको आगे आगे और बिठा रहे हैं, और ये है राजा। अभी ऐसे ही कथा कीर्तन चल रहा है तो एक दिन उसको पता चल गया वक्ता को कि बोले कि ये जो संत हैं बहुत नाराज है, नाराज क्या है कि महाराज को आगे बुलाते बैठाओ इधर बैठो, और हम लोग तो बड़े संत हैं, मतलब वो मन में ऐसे सोच रहे हैं हम तो बड़े संत हैं, और ये एक राज पालन करने वाला और उसको आगे बिठाते हैं, तो उनको गलत लगा। तभी वक्ता में भी तभी के वक्ता में पावर होता था, इतना पावर होता था चाहे वो उसको सबक सिखा सकते थे। उसने क्या किया कि पूरे राज्य में एक आग सा लगा दिया, तंबू बम्बू जो साधु लोगों को तंबू वगैरह दिया था उसमें भी आग लगा दिया, और बाहर से जाहिरात आ गई कि भाई पूरे राज्य में आग लग गया है, अपना अपना बचाव करो, कैसे करने क्या करना है वो अपनी अपनी बात है। अभी पूरे पूरे साधु संत है वो तो उठकर खड़े हो गए और लगे भागने लगे, सुनने भी नहीं कथा बताए, पर छोड़ो क्या कथा, अभी कथा का अभी नेमी महाराज जो है वो तो एकदम शांत से बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं कि जैसे कथा का एक एक शब्द का आनंद ले रहे हो। अभी नेमी महाराज तो भाई नेमी महाराज है, और वो साधु लोग गए क्या गए उसके पास, उसको सामान तो अपने साथ ही रहता है, तंबू में क्या होता है एक कॉफिन रहता है टंगा हुआ, वो सब नहाया वो कपड़ा, वो तंबू जल रहा है, जलाया भी होता है तंबू ने अपनी शक्ति से, और वो कॉफिन लेने के लिए कहीं साधु तो जल गए उसमें, ये जला मतलब मुश्किल से बाहर निकले हाथ में कॉफिन पकड़ के बोला ये कॉफी। तभी जाके सब शांत हो गया, और दूसरे दिन की सभा में वक्ता बोलते हैं महाराज बड़े महात्मा है गुरु, बोले आपने जो मन में डाह थी कि निमी महाराज को क्यों आगे बुला था आपको समझ में आ गई। बोले निमी महाराज यहाँ से उसका राज पूरा था, जल रहा था, वो यहाँ से कथा में से हिले नहीं है, और तुम लोग एक अपना कॉफिन बचाने के लिए खुद भी जले, तो ये स्थिति है, अब आप समझ में आ गई तुम्हारा ये बात। तो ऐसे ही है आसक्ति, एक छोटी सी में आसक्ति के लिए हमारा क्या क्या मतलब कथाओं को छोड़ के ये करके सार्वभौम को बताते हैं ना महाप्रसाद है गोविंद तभी जाके बोले इधर आकर ओम नमो भगवते वासुदेव तो पता नहीं कौन कहा है पर महाप्रसाद है गोविंद सब हाजिर हो जाते हैं। तो ये अभी प्रभु अपना अगले श्लोक में बताया था नारद मुनि अपना छह गोस्वामी के नायक रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ये कहते हैं पिछले श्लोक की बात है कि हमारी भगवान में इतनी मति लगे कि जो तरुणी और तरुण होता ना उतनी आसक्ति जो उनमें होती है इतनी आसक्ति हमारी भगवान में लगे। चैतन्य महाप्रभु खुद गंभीरा में रहते थे रात भर रोते थे ये विरह है और समुद्र में कूद जाते थे पता नहीं चलता था दो दिन के बाद समुद्र में से जाल में आके मछुआरों को मिलते थे। ये है भगवान के प्रति भाव विरह। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है मगर भाव है राधा रानी का तो राधा रानी के भाव में कृष्ण को पाने के लिए कितना विरह है। ये है भगवान की शक्ति में हमारा जैसे हम बताते हैं ना भाई नयनम गलत सुधारिया वदनम गत गत रुदिया गिरा पुल कहते हैं बपु कदा तब नाम गणे भविष्यति। हे प्रभो आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविशल प्रेम सुख धारा के अभिभूत हो गए कब आपके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ये गोपियों का भाव है। गोपियों भगवान को देखने के लिए उसकी एक पलक पड़ती थी ना तो भी उसको पत्तकलक पड़ता था ब्रह्मा जी को गाली देती थी ये बोला ये सृष्टा ने क्या है हमको पलक लगा दी है भगवान को देखने में इतना हमको तकलीफ होता है। देखो ये भगवान के प्रति आसक्ति है। राधा रानी भगवान को सुखी रखने के लिए खुश करने के लिए सब सारी सेवाएं होती एक जैसे हम लोग एक भगवान के लिए ऑफरिंग के लिए पेट तैयार करते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि कभी हमारा कुछ है सब भगवान के लिए है मतलब यही सोचते हैं भगवान का है हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसे गोपियाँ और राधा रानी भगवान के प्रति जो अपना नक्शे सिख तक पूरा श्रृंगार भगवान की खुशी के लिए करती थी उसमें अपने लिए कुछ नहीं है भगवान की खुशी के लिए। तो ऐसे ही भगवान के नाम प्रति भगवान की सेवा में हमारी आसक्ति होना चाहिए संसार में से हमारा मन को हटा के भगवान में लगाना चाहिए यही होना चाहिए सब। जय श्री प्रभात की जय जय गंधराज श्रीमद भागवतम की जय निदाय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा।